ने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर का फर्नीचर बढ़िया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस से मिल जाता सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
Petro Canada pesh kar de Juron heavy duty diesel engine oils hun full service savings naal 10W30 synthetic $20 discount, 5W30 $40 discount, offer limited time lay, 5W30 quick start aur oil flow thande mausam vich jeetu, 10W30 engine di karguzari nu banaye rakhda, QTL di tin locations te pujjo aur laab chakko, exit 268 Cambridge, exit 579 Napanee, exit 5 Fort Erie, Petro Canada aur UTL, बल्ले बल्ले अनूठा साक।
हो सीट महल ते साथ दियारो, दुनिया हुई दीवानी, हो शुद्ध खोए दी जे मिठे आई, रद रद के तुसी खानी, नॉन वेज ते वेज फूड दा, स्वाद बड़ा तूफानी, साडे स्वीट महल दा, लभणा नी कोई सानी।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 416-679-9991 ਤੇ 416-679-9191।
ट्रक ड्राइवर भाइयों, अब यूएस और कनाडा में अनलिमिटेड डाटा वीवो टेली कम्युनिकेशन के साथ, फुल स्पीड, नो रुकावट, सफर बिजनेस का हो या शौक का, वर्ल्ड वाइड ई सिम डाटा प्लान के साथ इंटरनेट हमेशा रेडी। ट्रैवल कर रहे हो इंडिया, पाकिस्तान या हज या उम्रे के लिए, वीवो टेली के साथ हमेशा रहो ऑनलाइन, दूर दराज इलाका कोई प्रॉब्लम नहीं, घर हो या केबिन, वीवो टेली की हाई स्पीड इंटरनेट चलती है दुनिया के किसी भी कोने में, विजिट करें vivotel.com या कॉल करें 416-243-9836। कनेक्शन आपका दुनिया के साथ।
खुश आमदी तमाम सामीन जो हमें सुन रहे हैं 770 AM डायल पर प्रोग्राम साजो आवाज, और अभी आपने बीवर टेल का एड सुना। अगर आप भी कनाडा से कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको डेटा रोमिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं बीवर टेल, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर बीवर टेल से मंसूर साहब, आइए उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब, कैसे हैं आप?
जी वालेकुम सलाम, बहुत अच्छे आप सुन।
बस सर दुआएं चाहिए आपकी, थोड़ा सा बीवर टेल के बारे में बताइए सर।
जी श्योर, हम आपको ये बीवर टेल इस तरह की सहूलत देती है कि जो आपको बहुत सारे जो हैप्टी चार्जेस लगते हैं दूसरी टेलीकॉम्स की वजह से कनाडा से बाहर जाने पे, जैसे कनाडा वाले अक्सर लोग इस चीज पे जो है एक्सपीरियंस अक्सर को हुआ होता है कि अगर आप गलती से मुल्क से बाहर जाते हैं तो जो मुल्क के अंदर है वहां तो डेटा सर्विसेज अच्छी हैं, जैसे बेल रॉजर्स, टेरस वगैरह हैं या दूसरे टेलीकॉम प्रोवाइडर हैं, जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो वो डेली आपको $10-15 पर आवर प्लस टैक्स के हिसाब से चार्ज करने लग जाते हैं
जी।
तो उस वजह से जब आप वापस आते हैं तो बहुत ज्यादा आपको बिल आ जाता है, तो उससे बड़ी परेशानी होती। तो ये है कि इस किस्म के जो चार्जेस हैं जो गैर जरूरी आपको कहना चाहिए कि जब सफर करते हैं तो उसमें ऑलरेडी अखराजात हैं, तो ये अननेसेसरी खर्चा पड़ जाता है जो आपको पता भी नहीं चलता है कि ये पड़ रहा है, राइट? तो हम उससे बचाने के लिए अपने कस्टमर्स को जो है हमने ऐसा नेटवर्क बनाया जो कि जिस मुल्क में भी आप जाएं लोकल है, आपको किसी किस्म के डेटा रोमिंग चार्जेस नहीं आते, वन टाइम पे एज यू गो सिस्टम है, कोई आपको इंस्टॉलेशन या कैंसिलेशन चार्ज नहीं है। आप एक दफा ई सिम ले लें, फिर जब दुनिया में 200+ डेस्टिनेशन आपके पास ओपन है और आपका फोन नंबर भी यही रहता है, वही का वही है, जिस टेलीकॉम के साथ आप हैं वही रहे आप, बेशक जो डेटा सर्विसेज हैं वो हमारी नेटवर्क पे आ जाती हैं टेम्पररीली, उससे ये कि आप बहुत सारा पैसा बचा लेते हैं। जैसे आपको $200-300 लग जाना है बिल, तो उससे अच्छा है कि $10-15 में आपको पूरा ट्रिप हो जाता है। तो उसमें ये है कि हमने मुख्तलिफ किस्म के पैकेज बनाए हुए हैं, वर्ल्ड के पैकेज हैं, उसमें ग्रुप पैकेजेस भी हैं। ये भी है कि आप एक पैकेज ले लें तो मल्टीपल कंट्रीज में फिर सकते हैं, और अगर एक ही मुल्क में जा रहे हैं तो वहां कर सिर्फ ले लें, तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये है कि अगर आपको तफसील चाहिए आप हमसे राबता कर सकते हैं 416-243-9836 पे, अगेन 416-243-9836 पे, या फिर आप हमारे वेबसाइट से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं beavertel.com। बीवर जो है बीवर एनिमल की स्पेलिंग है BEAVERTEL, टेलीकॉम के पहले 3 लेटर्स हैं beavertel.com। और या हमारी आप ऐप डाउनलोड कर लें BEAVERTEL के नाम से है ब्रावो टेंगो एको लीमा BEAVERTEL, उसको आप एंड्रॉयड जो गूगल प्ले स्टोर है वहां से ले सकते हैं, फ्री ऐप है, या आप एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। तो ऐप के अंदर सारे ऑप्शन मौजूद हैं, आप अकाउंट क्रिएट कर लें, आप डेटा परचेज कर लें और इंस्टॉल कर लें अपने फोन के ऊपर, तो इस तरह से आपको ये
सर्विस ले सकते हैं।
प्लस हम जी बिल्कुल
बिल्कुल जनाब, आप वेबसाइट सबसे पहले तो विजिट करें BEAVERTEL.com beavertel.com, और नंबर है, ये नंबर जो आपको बताया जाता है ये व्हाट्सएप पर भी काम करता है 416-243-9836 416-243-9836। और जैसे अभी मंसूर साहब ने बताया कि एंड्रॉयड और एप्पल पे आप फ्री ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं BEAVERTEL के नाम से, BEAVERTEL, बी लेटर बी TEL, टेलीफोन वाला टेल, तो आप फ्री ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप के थ्रू भी आप अपना डाटा रोमिंग चार्जेस ले सकते हैं। और आप एक बार ट्राई करके देखें, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कई बार आया और मैं हमेशा ही जो है वो यही कहता हूं कि जनाब जितने पैसों में आपको BEAVERTEL डाटा रोमिंग सर्विस दे देगा उतने पैसों में कोई और आपको नहीं देगा। खासकर अभी जैसे बात की कि जो यहां के लोकल सेलुलर कंपनीज हैं, कैरियर कंपनीज हैं, वो आपको $15 पर डे प्लस टैक्स लेते हैं, इसमें तो आपका पूरा एक महीने का इंटरनेट आ जाएगा। तो अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हैं, खासकर हज के लिए, अगर आपका कोई चला गया प्यारा या और भी बहुत से लोग अभी जाएंगे हज के लिए जा रहे हैं, कहीं से भी जा रहे हैं हज के लिए, तो आप एक नंबर याद रखें 416-243-9836 मंजू साहब आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल रहने के लिए।
थैंक यू सर।
अपना ख्याल रखिए, ये थे हमारे साथ BEAVERTEL के मंसूर साहब। अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हैं, आपका कोई प्यारा ट्रैवल कर रहा है, तो डाटा रोमिंग सर्विस के लिए 416-243-9836। चलिए जनाब इनकी बात कर लेते हैं नोबल फ्रेश फूड की, और नोबल फ्रेश फूड अब तीसरी लोकेशन भी बहुत जल्द आपके हमारे शहर ब्रैम्पटन में खुलने जा रही है। दो लोकेशन इनकी, एक लोकेशन है 20 ग्लेनिंगम ड्राइव और दूसरी लोकेशन है 2945 सैंडलवुड पार्कवे ब्रैम्पटन में, यानी एयरपोर्ट और सैंडलवुड पे पार्कवे पर, और दूसरा है 20 ग्लेनिंगम ड्राइव। आप जाएं एक बार जरूर तो आपको अंदाजा होगा कि कितने डिस्काउंटेड प्राइस में आपको फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दालें, मसाले, चावल तो इनके जबरदस्त, इसमें कोई कहते ना कि दो राय है ही नहीं, बहुत ही जबरदस्त आपको राइस भी यहां मिल जाएंगे। तो आप जाएं तो साजो आवाज का रेफरेंस जरूर दीजिएगा। चलिए जनाब अब आपको पाकिस्तान लेकर चलते हैं। पाकिस्तान जो है आरफा मुजफ्फर साहिबा की बात हुई है नाहिद खान साहबा से, और बेनजीर साहबा के बहुत करीब रही हैं, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, तो उनका प्रोग्राम शामिल करते हैं, फिर इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात रहेगी। तो बढ़ते हैं स्टूडियो नंबर 2 जहां आरफा मुजफ्फर साहबा की बात हुई है नाहिद खान साहब से।
हम दिनों का खासतौर पर तस्करा नहीं करते क्योंकि व्लॉग्स हमेशा के लिए हुआ करते होते हैं। I got a wonderful person today, और मैंने अपनी खास रिक्वेस्ट के साथ चाहा कि मेरी मोहतरमा नाहिद खान साहिबा से बात हो। आई वॉज एक्चुअली मैं एक केस था, डॉन में इसकी न्यूज भी है कि सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट नाहिद खान प्ली फॉर पीवीपी टाइटल। तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के बारे में कि हमारी अदलिया के जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने भी रिकोगनाइज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में किया था, और उन्होंने कहा था जो हमारे एक कोर्ट के जाहिर है जज जी, बेनजीर वॉज द ट्रू लीडर ऑफ द कंट्री ऑब्जर्व, ये चीफ जस्टिस ने हमारे ने कहा था। मैं नाहिद खान साहिबा के बारे में जब जिक्र करती हूँ या सोचती हूँ तो शी वर्क विद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो डायरेक्टली, उनके साथ थी, शी ट्रेवल विद हर। मेरा ख्याल है जब वो मुल्क से बाहर भी रही तब भी ये इनके साथ रही, जब ये पाकिस्तान भी तशरीफ लाई तब भी उनके साथ थी, इवन जब उनकी असैसिनेशन हुई उस वक्त भी मोहतरमा नाहिद खान साहिबा उनके साथ थी। मेरे साथ हैं इस वक्त, उन्हीं से हम चंद एक बातें करेंगे कि मैं जब आज भी तारीख के और आग को पलट के देख रही थी तो आई वॉज स्टंड बाय दीज थिंग्स के इस मुल्क में आप इमेजिन कीजिएगा कि एक दौर था कि नजरियात का दौर हुआ करता था, सियासत होती थी, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने भी चाहे वो क्वेटा के आर्मी कमांड ऑफिस में जाके उन्होंने बात की या जो कुछ भी बात की, ایک نظریات تھے, نظریے کی بنیاد پہ یہ ملک قائم کیا گیا تھا. مگر آج کے دور میں جب میں دیکھتی ہوں, آئی مائٹ بی رانگ, اور مجھے نہیں پتا کہ آج سے 10 سال 20 سال کے بعد کی کیا صورتحال ہوگی. مجھے یقین ہے کہ, اور میری خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ ریولیوشن آئے ضرور, اور یہ ریولیوشن یوتھ نہیں لے کے آنا ہے. آپ اپنے علم کے ساتھ, تعلیم کے ساتھ, شعور کے ساتھ ریولیوشن لے کے آ سکتے ہیں. بہرحال اس وقت محترمہ ناہید خان صاحب جب میرے ساتھ ہیں, میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ آج کی سیاست صرف مفادات کی سیاست ہے, پیسے کی سیاست ہے, کہ ہر انسان اپنی پوزیشن رکھنے کے لیے, اپنی سیٹ کو قائم رکھنے کے لیے. اور ہم یہ آج سے نہیں, ہم 1949 سے ہی بھگتتے چلے آ رہے ہیں. میرے ساتھ ہیں محترمہ ناہید خان صاحبہ, السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم سو لیٹ ان پاکستان.
السلام علیکم.
جو بات پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں پیپلز پارٹی کے مختلف دور دیکھے, ظاہر بھٹو صاحب کا دور واز ڈفرینٹ, پھر محترمہ بے نظیر صاحبہ کا جو دور تھا وہ, اور پھر ظاہر ان کی شادی ہو چکی ہوئی تھی, بہت سی جگہوں پہ بحثیت عورت بھی انہوں نے بحثیت ماں, بحثیت بیوی بھی رول پلے کیا, بٹ پاکستان کی بہترین لیڈر رہیں وہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ سے جو میرا آج پہلا سوال ہے کہ آپ نے یقیناً بھٹو صاحب کو بھی دیکھا ہوگا, آپ نے محترمہ کے ساتھ ڈائریکٹلی کام کیا, کیا محسوس کرتی ہیں اس پیپلز پارٹی کے بارے میں جو بھٹو صاحب کے دور میں تھی, پھر جب محترمہ آتی ہیں محترمہ کے دور میں کیا تھی, اور آج کی پیپلز پارٹی کو آپ جب دیکھتی ہیں تو کیا ان تینوں کو کس طرح تفریق کریں گے ان کی؟
میں سن رہی تھی بہت, آپ نے چند ہفتوں میں پاکستان کی پوری پالیٹکس کو جس طریقے سے آپ نے سمیٹا ہے. بھٹو صاحب کا جہاں تک ایز فار ایز بھٹو صاحب کا ایرز کنسرن یا ان کی گورنمنٹ کنسرن ہے, ہم لوگ پرسوں کے جتنے وہ نہیں تھے, اسٹوڈینٹ تھے, بہت چھوٹی کلاسز میں, تو اس کو تو میں اتنا زیادہ نہیں, سوائے اس کے کہ گھر میں بھٹو صاحب کے سب سپورٹر تھے, ٹھنڈے لے کے باہر نکلتے تھے, اسکولوں کے بچے بھی سب جیے بھٹو جیے بھٹو, اس کے علاوہ کوئی وہ نہیں تھا کہ بھائی بھٹو کی کیا فلسفی ہے یا کیا. لیکن جیسے جیسے ہم تھوڑے بڑے ہوتے گئے, جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں شیخ ذوالفقار علی بھٹو کی کا جو نظریہ تھا, وہ پاکستان کے ان غریب عوام کے لیے اس پارٹی کو بنایا گیا تھا جس کا نام پاکستان پیپلز پارٹی تھے, جس میں انہوں نے چار پاکستان کے عوام کو ایک نعرے دیے تھے جس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو روزی کپڑا اور مکان کے ساتھ اسلام ہمارا دین ہے اور جمہوریت ہماری سیاست ہے اور طاقت کا صرف چشمہ عوام ہے. اس وقت یہ چیز جو ہے نا, طاقت کا صرف چشمہ عوام یعنی پاور, یعنی ہر طاقت کا صرف چشمہ عوام ہے. آج عوام جو ہے نا, بی نے یقیناً انہی نعروں کے ساتھ چلی, بی بی بھٹو صاحب کی آئیڈیالوجی اور لیگیسی کو لے کے چلتی رہی, اور اس میں بلکہ انہوں نے دو تین چیزیں, علم روشنی اور کام, مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ ایڈ کیا اس کے اندر. لیکن انہوں نے جو بھٹو صاحب کی بیسک فلسفی کی یا بھٹو صاحب کی جو بیسک آئیڈیالوجی, سے کبھی انہوں نے انحراف نہیں کیا. دیکھیے بھٹو صاحب کا ایک, آج جب ہم ساری تاریخ کا کو دیکھتے ہیں, بیوی کے ساتھ جو ہم نے پالیٹکس کو سیکھا, کہ بھٹو صاحب نے ایک پاکستان کی پالیٹکس چند خاندانوں تک محدود کی, اس کو کہا جاتا تھا کہ 22 خاندانوں تک ہیں. بھٹو صاحب نے اس پالیٹکس کو خاندان جاگیرداروں وڈیروں کے گھروں سے نکال کر, ان کی خاندانوں سے نکال کر, انہوں نے تھڑے پہ چائے کی دکانوں تک, تھڑے پہ بیٹھنے والے غریب مزدور تک پالیٹکس کو لے کے آئے, جس پہ ہر شخص کو یہ احساس ہوا, اپنی عزت نفس کا احساس ہوا, اپنی یہ انٹیگریٹی کا احساس ہوا, سیلف ریسپیکٹ کا احساس ہوا کہ میری بھی اس, میرے ووٹ کی بھی کوئی قیمت ہے اور میری بھی کوئی اہمیت ہے. جب بھٹو صاحب نے جب یہ کہا کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے, تو انہوں نے پھر عوام کی طاقت پہ پالیٹکس کو کیا. دیکھیے بھٹو صاحب کے دور میں اسٹوڈنٹ یونین بین تھی, جس وقت ایوب خان صاحب کا دور تھا, یعنی موسٹلی اس ملک کے اندر فوجیوں نے, فوجی ڈکٹیٹرز رہے. لیکن جو بھٹو صاحب کو ملا ٹائم, انہوں نے پاکستان کی عوام کے لیے جو کچھ کیا ان کو سب سے بڑی جو بھٹو صاحب کی کنٹریبیوشن ہے اس پوائنٹ پہ کہ لوگوں کو انہوں نے ایک زبان دی, لوگوں کو اپنے رائٹ کے لیے لڑنا سکھایا, انہوں نے لیبر یونینز کو باہر کیا, انہوں نے اسٹوڈنٹ یونینز کو باہر کیا, انہوں نے آپ کے خواتین کو حقوق دیے, پاکستان کے اندر نیوکلیئر پروگرام پہ کیا. آج پاکستان جو اتنی پروٹیکشن میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھٹو صاحب کا انیشیٹو تھا نا, لیکن سزا انہوں نے بہت بڑی, اس کی قیمت بہت بڑی ادا کی, لیکن آج پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے نا کہ پاکستان محفوظ ہے. آپ لیبر کے رائٹس کو بحال کیا, اسٹوڈینٹس کے, خواتین کے, یعنی ہر طبقے کے لوگوں کو جس نے جن نے ایک عوام کے ساتھ ان کا کنیکٹ بن سکتا تھا اس قدم کو انہوں نے اٹھایا اور اس سے پالیٹکس کو آگے لے کے چلے. اب آگے آتا ہے بی بی کا دور, بی بی یقیناً بھٹو صاحب کی بیٹی تو تھی, لیکن بی بی کو اس لیے پولیٹیکل لیڈر نہیں بنایا گیا کہ وہ صرف بھٹو صاحب کی بیٹی, بی بی نے اپنے کردار, اپنی آئیڈیولوجی, اپنی کردار کی مضبوطی, اپنی یعنی اس سے ثابت کیا کہ وہ لیڈر بننے کی اہل ہے. جب وہ آپ اگر ان کی لاسٹ 22 دسمبر کو انہوں نے جو لڑکانہ میں اسپیچ کی ہے اس میں بھی دیکھیں کہ اس وقت بھی وہ اپنے بار بار اسپیچ میں لاڑکانہ سے وہ گڑی خدا بخش کی طرح منہ کر کے بار بار کہہ رہی تھی اے قائد عوام, اے قائد عوام, یعنی ان کو وہ تب بھی اپنا لیڈر مانتی تھی, اے قائد عوام تیرے یہ لوگ, تیری یہ بیٹی, تیرے یہ بیٹے آج تک تجھے نہیں بھولے. یعنی بی بی نے بھٹو صاحب کی لیگیسی کو کیری کیا, اسی طرح عوام کے حقوق کی بات کی, عوام کے لیے جدوجہد کی, اور آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی کو کتنے خطرات تھے, ان کو منع کیا گیا, ان کو کہا گیا کہ آپ پاکستان واپس نہ آئے, آپ جان کو خطرہ ہے, باقاعدہ ان کو مختلف لوگوں سے کہلوایا گیا, لیکن انہوں نے کہا میرا مرنا جینا پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے, میں اپنی دھرتی پہ مرنا زیادہ پسند کروں گی, میں اس سے زیادہ آپ اسرائیل میں نہیں رہ سکتی. اب اس سے بڑی لیڈر کیا قربانی دے سکتا ہے جس کو اپنی زندگی کا بھی خطرہ ہو, اپنی سب کچھ ہو, لیکن اس کے باوجود جب وہ پاکستان آئی آپ نے دیکھا کس طرح لوگوں نے والہانہ ان کا استقبال کیا, کس طریقے سے انہوں نے زمین کو اپنی سجدہ کیا, کس طریقے سے وہ روئی ہیں, کس طریقے سے انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے. یہ ہوتی ہے جذبات, یہ کوئی دکھانے کی باتیں نہیں ہوتی, یہ انسان کے اندر کی جو جینوئن اس کی فیلنگ ہوتی ہے وہ ان کے اندر کی فیلنگ. ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, لیکن میں جو میں کہتی ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کا جو کنیکٹ, جو بی بی کا کنیکٹ میں نے دیکھا ہے عوام کے ساتھ, اس طریقے سے اگر کوئی کسی کے گھر میں ڈیتھ بھی ہو جاتی تھی, چھوٹا سا گلی میں کوئی کارکن ہوتا تھا تو مجھے فون کر کے کہتی تھی نائب میرے بہاف پہ ان کے گھر جاؤ, ان کو لیٹر بھیجتی تھی, باقاعدہ فون کرتی تھی, ہر کسی کی خوشی غمی میں اس طرح شریک ہوتی تھی, بائی نیم کارکنوں کو جانتی تھی, اور اس طرح جو ان کا کنیکٹ تھا کارکنوں کے ساتھ وہ انہوں نے کبھی ٹوٹنے نہیں دیا. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جب کہا جاتا ہے چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر, وہ باقی چاروں صوبوں کی زنجیر تھی, اور آج دیکھیں پیپلز پارٹی کے لیے تو چاروں صوبے بکھر گئے ہیں. اور آج کی جو پیپلز پارٹی ہے, میں بہرحال کسی کی ذات پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتی اس لیے کہ میری ویلیوز کے خلاف ہے یہ, میں صرف اتنا کہوں گی کہ جو بھٹو صاحب کی آئیڈیولوجی تھی, جو بھٹو صاحب کی لیگیسی تھی, اس کو انفارچونیٹلی بالکل بھلا دیا گیا ہے, اور ایک نئی طرز کی پیپلز پارٹی آ گئی ہے جس نے صرف بڑے 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 جاگیردار, بڑے بڑی گاڑیوں والے, بڑے بڑے پیسوں والے لوگ وہ پالیٹکس کا حصہ بن گئے ہیں, اور چند خاندانوں کے اوپر ساری پالیٹکس کرنا, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے سندھ ہو, میں صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں, میں تمام پارٹیوں کی بات کر رہی ہوں کہ چند خاندانوں کے اوپر یہ ساری پارٹیاں بن گئی ہیں, اور انہوں نے باقی پوری قوم کو اپنا غلام بنا لیا ہے, اور یہ پالیٹکس کا ہے بس.
आपने आपने बिल्कुल कहा कि प्रोफेसर साहब खानदानी पॉलिटिक्स के ऊपर बिलीव बिल्कुल नहीं करते थे, फिर आपने उसको एलैबोरेट भी कर दिया कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा जब एज ए प्राइम मिनिस्टर आती हैं या इस पोजीशन में आती हैं तो उन्होंने क्वालिफाई किया था और वो उस हवाले से आई थी। आपने कहा कि अवाम ताकत का सरचश्मा है, मगर मेरा ख्याल है कि भुट्टो साहब के दौर में भी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौर, बल्कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौर में जागीरदार और वडेरा बिल्कुल आगे था और आज तो खैर बहुत ज्यादा आगे हो गया है। इस वक्त की पीपल्स पार्टी को जब आप देखती हैं, आपने कहा कि आप बहुत ज्यादा उसके बारे में डिस्कस करना नहीं चाहती, और बिलावल भुट्टो और मोहतरमा आसफा भुट्टो साहिबा और बख्तावर साहिबा, इनका बचपन आपके हाथों में गुजरा। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर थी, बट एज अ साउथ एशियन वुमन शी वॉज अ वाइफ एज वेल। डू यू थिंक कि उनकी जिंदगी में उनके शौहर का उन पे इतना कंट्रोल था कि उस जमाने में भी हमें एक लव सुना करते थे मिस्टर 10%। और एक बात मैं तमाम सामईन से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और हमारे रेडियो के भी जो लिस्नर है मैं उनको कहना चाहती हूँ, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनल, वी आर नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी, मगर ये वो आवाजें थी जो मेरे और आपके कानों ने सुनी थी। तो मैं ये समझती हूँ बींग अ वुमन कि वो एक बीवी भी थी एंड शी वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हर हस्बैंड, और बाहर की दुनिया को हस्बैंड उनके जब बाहर देखते थे वो जो एक 10% की छाप लगी थी, वॉज शी अवेयर ऑफ ऑल अगर कुछ इरेलीवेंट हो रहा था या जो नहीं होना चाहिए था, क्या वो उससे वाकिफ थी?
देखिए आरिफा दीदी, जहां तक दीदी के बच्चों की बात है, दीदी हमेशा बच्चों के जब तक वो जिंदा रही हैं, उन्होंने कभी बच्चों को पॉलिटिक्स में आने की बात नहीं की, उन्होंने हमेशा बच्चों की एजुकेशन पे तवज्जो दी है, उन्होंने बच्चों की हर चीज को चेक करती थी, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग पे वो ज्यादा तवज्जो देती थी कि बच्चे अपनी पढ़ाई के बाद अपना फ्यूचर जो बनाना चाहते हैं वो बनाए। कभी उन्होंने इनकरेज नहीं किया कि भाई ये पॉलिटिक्स में आएंगे या मेरी जगह लेंगे, कभी नेवर। वो हमेशा बच्चों की पढ़ाई और उसके बारे में फिक्रमंद रहती थी, स्कूल्स में भी खुद जाती थी, चेकिंग भी उनके घर उसकी खुद करती थी, होमवर्क की, फिर उनकी पढ़ाई पे भी तवज्जो देती थी, उनकी पॉकेट मनी का भी हिसाब रखती थी, हर चीज का उन्होंने ना अपने बच्चों के ऊपर चेक रखा है कि भाई उनकी ग्रूमिंग जो उनको 9 ईयर्स मिले थे दुबई में हो रही है, उन्होंने अपनी बच्चों की ग्रूमिंग पे लगाए हैं, बच्चे और बच्चा जो वेल मतलब माँ की इन्फ्लुएंस में रहे हैं और बच्चे बहुत अच्छे दीदी ने अपने बच्चों को पाला था। एज फार एज पॉलिटिक्स की कंसर्न है, हाँ उस वक्त ये था कि आसिफा जो थी वो छोटी थी बहुत, वो आसिफा कभी पाकिस्तान आती थी तो वो दीदी मुझे फोन करती थी कि नाही जिसको थोड़ा शौक है इसको जब मीटिंग में तुम जाती उसके साथ ले जाए, तो अक्सर कभी वो बच्ची मेरे साथ ऐसे कभी जब भी पाकिस्तान कभी एक दफा आए तो मेरे साथ चली जाती उनकी मीटिंग में। और जहां तक बिलावल का ताल्लुक है, हम तो हमेशा बच्चों के लिए दुआगो रहते हैं क्योंकि वो बीबी के बच्चे हैं, हमारे साथ उनका ताल्लुक रहे या ना रहे वो बीबी के बच्चे हैं, हम हमेशा उनके लिए दुआ करते हैं। बिलावल ने टेक ऑफ बहुत अच्छा किया, बिलावल ने बहुत बोल्ड बातें की हैं, बहुत बोल्ड स्टैंड बहुत सारे इश्यूज के लिए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिलावल के पॉलिटिक्स में इतनी इंटरफेरेंस है। एक तो पार्टी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो हैं और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है जो कि उनके वालिद साहब जिसके चेयरमैन है, जो कि प्रेसिडेंट होने की हैसियत से पॉलिटिक्स नहीं कर सकते लेकिन वो कर रहे हैं, चाहे वो उनकी मर्जी हो तो उनसे सिस्टम वाले पूछ सकते, मैं तो नहीं पूछ सकती ना उनसे। बिलावल की जो जो आजकल जो पॉलिटिक्स आप जो आपने खुद भी डिस्क्राइब किया है, पॉलिटिक्स हो गई है कि आप जो आपका जो पार्टी लीडर है या आपके जो जिनके आपके हल्के के लीडर हैं या जो भी लीडर है आप उनके हाथों पे बैत करें, उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, उनकी हर बात को यस करें तो आप पार्टी के अंदर सर्वाइव कर सकते हो, अदरवाइज आप पार्टी के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। और ये हो रहा है क्योंकि जब एक पार्टी के अंदर 10 लीडर बन जाए तो लीडर हमेशा एक ही लोग एक्सेप्ट करते हैं, 10 लोग हो जाए जो ये कहें कि भाई बिलावल के हाथ में फैसला नहीं है, फैसला फलाके हाथ में फलाके हाथ में फलाके क्योंकि बहुत सारे लीडर है सोसाइटी में, पूरी फैमिली लीडर है। तो बिलावल की वहां चल नहीं सकती ना। बिलावल अगर सिंगल हैंडेडली अगर वो पार्टी के चेयरमैन इलेक्ट होते और पार्टी एक ही पता चला था तो ठीक है। अब होता ये है कि सीसी की मीटिंग हो रही है, फेडरल काउंसिल की मीटिंग हो रही है, या कोई सेनेटर की एमएनएस की एमपीएस की मीटिंग हो रही है, ठीक है वो तो चलो पार्लियामेंटेरियन हेड के चेयर से बैठे, लेकिन पार्टी मीटिंग भी हेड जो है ना वो खुद करते हैं, तो फिर बिलावल की कौन सुनेगा या बिलावल टेकअप कैसे करेगा। बिलावल के मतलब मैं बड़ी ऑनेस्टली मुझे बहुत इसके लिए वो भी होता है, बिलावल के लिए बहुत बुरा भी लगता है कि उस उनको चांस देना चाहिए था ग्रूम होने का, आगे जाने का। वो जो जितना बोल्ड स्टैंड वो लेते रहे, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, शुरू में बोल रहे हैं, लेकिन अब मैं नहीं समझती थे अब कोई उनके वालिद साहब ने उनके लिए कोई गुंजाइश छोड़ी है कि वो पॉलिटिक्स में कोई ऐसा रोल प्ले कर सके। हाँ कभी उनको अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों के ये कहीं में भी रूमर्स भी हो सकती हैं, गलत सोशल मीडिया का भी कैंपेन हो सकती है कि जी वो कह रहे हैं कि जी इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं तो फॉरन मिनिस्टर बना दे। मतलब पीपल्स पार्टी की अब ये पोजिशन हो जाए, सिंध की सबसे बड़ी पार्टी है कि वो ये इस उस पे आ जाए कि उनके लीडर को जो उनका चेयरमैन पार्टी का हो के लिए वो बैक करेंगे जी, या उसको डिप्टी चेयरमैन बना दें या उसको बदल। आपने कभी ये कथारसिस करने की कोशिश नहीं की, आप बैठ के कभी आप लोगों ने पीपल्स पार्टी के लीडर जो इस वक्त सारे हैं, मैं तो सबको कसूरवार कहती हूँ पार्टी में, सिर्फ एक किसी एक शख्स का कसूर नहीं, जितने पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी में इस वक्त या पार्लियामेंटेरियन के जो लीडर बैठे हैं दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डाउनफॉल जो पार्टी की हुई है। कि आज पंजाब में पार्टी आपकी खत्म हो गई है, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, बलोचिस्तान में आपने जिस तरीके से बनाई है वो सब दुनिया को पता है। तो आप एक सिंध बेस्ड पार्टी बन गए हैं, एक वो पार्टी जो जिसके लिए चारों सूबों की जंजीर बेनजीर भुट्टो साहब को बोला जाता था, वो पार्टी जब इस हाल पे पहुंचेगी तो वो भी पार्टी जिस तरीके से इलेक्शन हुए हैं या जिस तरीके से इलेक्शन में रिगिंग की गई है वो भी जेन्युइनली वोट लेके तो नहीं आ रही, क्या हमें दुख नहीं होगा। देखिए एक जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, एक ये बिल्डिंग होती है, एक जिसने आप देखेंगे कोड़े खाए लोगों ने, फांसियां ली लोगों ने, आज भी वो लोग मर रहे हैं, उनके घरों में खाने को नहीं है, शाही के लिए काटे लोगों ने, लेकिन आज क्या है, जीरो से स्टार्ट हुए कारकुन जीरो पे आके उनका एंड हो गया, कोई पूछने वाला उनको नहीं है। तो पार्टियां इसको नहीं
कही, आपने कहा भुट्टो साहब का हमने पहले जब जिक्र किया तो उन्होंने कहा था कि अवाम ताकत का सरचश्मा है और वोट को इज्जत दो के बारे में तो जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत बार कहा। हाउ डू दीज पॉलिटिशियन फील, डोंट दे फील दे आर हिपोक्रेट्स, कि एक तरफ कहते हैं कि वोट को इज्जत दो और दूसरी तरफ आप फॉर्म 45 एंड 47, और बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट से सब मौजूद हैं जिन्होंने रिफ्यूज भी किया कि हम फॉर ग्रांटेड विक्ट्री नहीं लेना चाहते। आप और इस वक्त जो हाइब्रिड गवर्नमेंट है, इसमें पीपल्स पार्टी भी बैठी हुई है, इसमें मुस्लिम लीग नून भी बैठी हुई है, इसमें बाकी लोग जो हैं, तो दोनों के जो ये लफ्ज है कि ताकत का सच चश्मा आवाम है, जब आवाम ने वोट दिया तो आपने वो पार्टी नहीं है, आपने वोट ही चेंज कर दिए, आपने रिजल्ट ही चेंज कर दिए, इस पे आप बहैसियत पॉलिटिशियन बहैसियत बीवी की जो आप पर्सनल सेक्रेटरी थी, व्हाट डू यू फील?
देखिए आरिफ बीबी, मैं तो बिल्कुल ये कहती हूँ कि जो ये कहते हैं ना कि हमने मेजोरिटी वोट किए हैं, चाहे वो पंजाब है चाहे सिंध है चाहे जो भी है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए बात ये है कि अब किसी को अवाम के वोट की परवाह नहीं है, जब 547 बन के आते हैं, जब आप सपोर्ट करने वाले आपको दूसरे लोग हिडन हैंड होते हैं, तो फिर आप किससे जाके, आवाम की जरूरत नहीं है ना उनको, आवाम की इसलिए जरूरत नहीं है कि आवाम के वोटों की अहमियत खत्म कर दी गई है। आवाम के वोटों की अहमियत खत्म करके तो वोट जिनकी लोगों की अहमियत बना दी गई है, जो उन्होंने 547 इनको देते हैं उनकी अहमियत हो गई है, ये उनके पास जाते हैं ना, आवाम के पास क्यों जाएंगे। आवाम के साथ मैं आपको ऑनेस्टली कह रही हूँ, इस वक्त किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे वो पीपल्स पार्टी है चाहे मुस्लिम लीग नून है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, आवाम के साथ इसका कोई कनेक्ट नहीं है। हर कोई इस दौड़ में है कि मैं जो है ना जो गुड
खा लूं और कितना कमा लूं और किसको ले आऊं। देखो सही है, मैं दो चीजें कोट करना चाहती हूँ और मैं आपसे यकीनन इस मुल्क को अजीम लीडर मिले, बट अनफॉर्चुनेटली जब हम 51 से स्टार्ट होते हैं, बल्कि शायद उससे पहले का भी कोई जिक्र आ जाए, लियाकत अली खान गए जनाब से और वर्दी खान साहब को बीच में से माइनस किया गया, फिर उसके बाद भुट्टो साहब को माइनस किया गया, दरमियान में कुछ एक दो लोग और भी आए कि लियाकत अली खान साहब की जिसके पास फाइलें थी उनको भी मरवा ही दिया गया। खैर भुट्टो साहब आए, भुट्टो साहब के बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब आई और ये पॉलिटिशियंस आपस में मिलते रहते हैं, उन्हीं लोगों के साथ मिलकर इकतदार में आ जाते हैं, किसी का इकतदार 3 साल रहता है, 2.5 साल रहता है, 4 साल रहता है। मेरा सवाल ये है कि मोहतरमा ने जो उनके वालिद साहब के साथ पॉलिटिकल लीडर थे, जैसे मैं गुलाम मुस्तफा खर साहब की बात करती हूँ, बहुत लंबा साथ रहा भुट्टो साहब के साथ और फिर दरमियान में एक स्टेज ऐसी आई थी कि वो पार्टी को छोड़ देते थे, वापस आ जाते थे, बट एक स्टेज पे आके मोहतरमा ने एक कंडीशन लगाई थी कि जो पार्टी को छोड़ के जाएगा अगर वो वापस आएगा तो दोबारा अपनी उसी पोजीशन पे नहीं आएगा, जो कि गुड था फॉर द सेक ऑफ फ्लोर क्रॉसिंग, बल्कि वो फिर 4 साल के लिए एज ए वर्कर रहेगा और वो आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली मैं जब मोहतरमा को देखती हूँ तो उनके बहुत सारे प्यारे साथी, जिसमें आपके शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी को छोड़ के चले गए, आप बाबर आवान साहब के भुट्टो साहब की जब डेथ हुई थी ये आदमी जारो कतार रोया भी था, आज वो भी पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है, जनाब मेरा ख्याल उनका नाम स्पीकर थी फहमीदा मिर्जा साहिबा, वो भी आज पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है, आप यू आर वेरी क्लोज टू मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एज हर पर्सनल सेक्रेटरी, यू आर ऑल्सो नॉट देयर। तो आपस में जो बांट लोगों की लगी हुई है, या एक और मैं नाम लेती हूँ भुट्टो साहब, बड़ा उनको इंटेलिजेंट कहते थे मुमताज भुट्टो को, मगर जब उनका अपना वक्त आया था तो मुमताज भुट्टो साहब ने भी जियाउल हक साहब के साथ समझौता करके भुट्टो साहब को बैक स्टैप कर दिया था। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ऐसे हैं कि वो अपना पैसा, अपनी पोजीशन और इख्तदार को सोचते हैं, दे आर नॉट कंसिडरिंग अबाउट द वैल्यूज, नजरिए के बारे में नहीं सोच रहे, और इट्स वेरी कॉमन दीज डेज।
आजकल दीदी कुछ लोगों के आपने नाम लिया है, एक तो सबसे पहले ये बात कि दीदी ने इसके पर पार्टी के अंदर आने या जाने पे पाबंदी लगाई थी, मैंने मेरा भी ख्याल के लिए ऐसी दीदी ने कभी भी बात की है, दीदी हमेशा
बल्कि खर साहब को उन्होंने आने जाने दिया, बट एक से एक पे उन्होंने ये लक्ष्य कहा था कि अब जो जाएगा और वापस आएगा तो हैज टू वर्क एज अ वर्कर फर्स्ट फॉर
पॉलिटिक्स करने में और हर बंदे की रिस्पेक्ट करती थी, ऐसी बात नहीं, किसी का हमेशा सबके साथ उनका बहुत अच्छा ताल्लुक रहा, बहुत उनकी रिस्पेक्ट करती थी, उनके मतलब वालिद के साथ वो रहे, इस लिहाज से भी बहुत इज्जत करती थी, खर्जा खुद भी बीवी के साथ काफी उनकी रिस्पेक्ट करते थे। जहां तक बाकी लोगों का ताल्लुक है, शाह महमूद कुरैशी साहब, वो तो इनके साथ अपने जरदारी साहब की एक कैबिनेट में रहे हैं, फिर उनके क्या जरदारी साहब के साथ इख्तलाफात में वो मैं कुछ नहीं कह सकती, वो ही बता सकते हैं, या बाकी जो लोग हैं उनके क्यों, क्योंकि बाबर अवान साहब तो बहुत लेट पार्टी में आए हैं ना, भुट्टो साहब के दौर के तो वो बाबर अवान साहब नहीं थे ना, बाबर अवान साहब तो बहुत लेट बीबी के
डेथ के ऊपर वो बहुत गमजदा थे और जारो कतार रोए भी थे,
शायद तो एक पूरा पाकिस्तान रोया, सिर्फ बाबर अवान साहब बड़े क्लोज रहे, उनके वो रहे हैं वकील भी रहे हैं, सब कुछ हुआ है, तो यकीनन रोए होंगे, जाहिर किसको दुख बीबी की शहादत का नहीं हुआ। एज फार एज आई एम कंसर्न या मेरे हस्बैंड सफदर वासी सब कंसर्न है, हमारा किसी के साथ जाती इख्तलाफ नहीं, हमने कभी जरदारी साहब के लिए कोई बैड अपने वर्ड्स नहीं यूज किए, जबकि लोग जो उनके बारे में क्या क्या, जो उनके बहुत क्लोज बैठे हुए हैं, जो बहुत कुछ उनके बारे में कहते हैं, लेकिन हमारे वैल्यूज इजाजत नहीं देती, हमें दीदी का एहतराम है और हम दीदी के साथ जुड़े हुए हर रिश्ते के एहतराम करते हैं और हम कभी किसी को बुरा भला नहीं कहते, सियासी इख्तलाफ जरूर करते हैं, सियासी बात जरूर करते हैं, बट नॉट जातियात पे हम कभी नहीं आए किसी के। हमारा इख्तलाफ जरदारी साहब से पार्टी के चलाने तरीका कार पे पहले दिन से हो गया था, क्योंकि हमने देख लिया था कि जो तरीका कार जरदारी साहब अपनाना चाहते हैं वो कम से कम हमारे जैसा पॉलिटिकल कारकुन जिन्होंने अपनी इंटेग्रिटी के साथ सियासत की है, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ सियासत की है। बीवी के साथ हमारी बहुत बहस होती थी, बीवी से डांट भी हम बड़ी खाते थे, लेकिन बीवी को जब ये एहसास होता था कि हम जो बात कह रहे हैं उसके पार्टी के इंटरेस्ट की बात है तो वो हमारे साथ बैठ के उसको एक्सेप्ट भी करने की बात। तो बात लीडर वो होता है जो आपको इजाजत इतनी देता है, आपको इतनी स्पेस देता है कि आप
उसका कर सकें।
अब वो जमाना नहीं है, अब सरकारी साहब इस यानी टेम्परामेंट के आदमी नहीं है। वो यानी समझते हैं कि वो हर एक को एक लाठी से हाँक लेंगे, तो कम से कम हम ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। अब पार्टी के कारकुन है, पार्टी के भुट्टो के फॉलोअर है और हमेशा रहेंगे। ना वो पार्टी से, ना हमारा वो नाम छीन सकते हैं भुट्टो का हमसे, और ना उनको कोई इजाजत है कि वो हमारे साथ कोई इस किस्म की वो करे, ना हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक है। हम अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, हम आज भी शेख जुल्फिकार अली भुट्टो की आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं, आज भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब की लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं, आज भी हमने उनकी जो भुट्टो साहब के प्रिंसिपल हैं आइडियोलॉजी के उन्हीं के ऊपर हम चलते हैं। अब तो पीपल्स पार्टी, ये तो अब जो पीपल्स पार्टी रहेगी इनको तो आपने जरदारी साहब की पार्टी कह दिया, क्या भुट्टो साहब की पार्टी तो नहीं रह गई? आप तो सब जरदारी चला रहे हैं ना इस पार्टी। तो अब ये तो सवाल जो है वो जरदारी साहब से करना चाहिए कि उन्होंने एक अवामी पार्टी को जिसको भुट्टो साहब ने एक जागीरदारों के महलों से निकाल कर खड़े चाय की खड़े की दुकानों पे ले गए, उस पार्टी को इस तरह महदूद कर दिया गया है कि वो आज वो क्या कहते हैं ना बंद कमरों की पार्टी बन गई, और कोई कारकुन बेचारे की कोई हैसियत नहीं है, इसलिए कि उनका उनका जो कनेक्ट है ना पार्टी के साथ तो उनका वर्कर का अब उनका आइडियोलॉजी वर्कर वाली जो है ना ताकत का सच चश्मा वांग वो उनकी आप ताकत का सच चश्मा नहीं है, उनका ताकत का सच चश्मा अब चश्मा कहीं और से निकलता है उसके मुताबिक वो चलते हैं। अब मैं इससे ज्यादा आपको
अच्छे तरीके से बताया, मगर मेरा वही मैंने ये सवाल आपसे पहले भी किया था, आपने शायद उसको पास कर दिया कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वॉज अ वेरी गुड लीडर, बहुत अच्छी माँ थी, बहुत अच्छी बीवी भी रही, क्या और जरदारी साहब की इन्फ्लुएंस एज अ हस्बैंड, बिकॉज वो सुनने वाली थी, एहतराम करने वाली थी, वैल्यूज के साथ थी, तो क्या उन्होंने वो जो मिस्टर 10% मशहूर हुए और शायद बाद काम जो बेनजीर साहब नहीं करना चाहती थी, क्या वाकई उस जमाने में जरदारी साहब ने वो काम किए?
सॉरी आजम दीदी, मैंने अगर ये सवाल आपका मिस किया है, सॉरी। मैंने देखिए, एक तो जरदारी साहब का बीबी की जिंदगी में पॉलिटिक्स में कोई रोल, पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स में एब्सोल्युटली नो रोल। बीबी बिल्कुल उनको किसी किस्म की उनको इजाजत नहीं थी पार्टी के मामला में इंटरफेयर करने की, और वो ना पार्टी की कभी किसी मीटिंग में बैठते थे, ना उनको कभी बीबी ने किसी मीटिंग में बिठाया था, वो अपने काम से काम रखते थे। बीबी पॉलिटिक्स को बीबी खुद रन करती थी, और अगर आपको याद हो बीबी ने जिस दिन दुबई से वो आई थी पाकिस्तान वापस, तो बीबी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उससे एक दिन पहले, और बीबी ने ये बिल्कुल आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को निकाल के देखते हैं, इसमें बीबी ने कहा था कि जरदारी साहब को कोई रोल अब पॉलिटिक्स में नहीं होगा, वो अपने यहाँ पे अपने बिजनेस को और बच्चों को लुक आफ्टर करेंगे और मैं पाकिस्तान जाके पॉलिटिक्स को संभालूंगी। वो एक बहुत अच्छी माँ थी, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि वो ग्रूमिंग में उन्होंने बच्चों की बहुत अच्छी ग्रूमिंग की है, वो बहुत अच्छी वो उन्होंने बीइंग अ बीवी उन्होंने उनका रोल बहुत मॉडल यानी रोल मॉडल थी। देखिए वो जेलों में मुझे याद है दोपहर की तपती कराची की इस्लामाबाद की गर्मी में जिस तरह कोर्टों में वो या जेलों में उनको मिलने जाती थी छोटे छोटे बच्चों के साथ, ये एक अच्छी बीवी कर सकती है ना। अब जरदारी साहब को 10% जिन्होंने लोगों ने खताब किया था दिया था, आज उन्होंने ही उनको प्रेजेंट बनाया हुआ है, अभी मैं इससे ज्यादा और क्या कहूँ।
बहुत शुक्रिया, ये बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि जाहिर है मैं कंसर्न्ड हूँ, और आप यू आर वेरी क्लोज टू मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, एंड आप आखिर में बैठी भी हुई थी उनके पास, क्या किसी को कोई खौफ था आपसे कि आपको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया, कि देयर मस्ट बी शी मस्ट नो अबाउट सम फैक्ट्स, और मोहतरमा ने कभी कोई ऐसी बात उनसे की होगी?
मुझे साइड लाइन वो क्या करते, मैं खुद इनके साथ नहीं चल सकती कि मुझे उन्होंने साइड लाइन क्या करना था। मैं समझती थी कि जो पॉलिटिक्स हमने दीदी के साथ की है, जो आइडियोलॉजी के साथ हम चले हैं, स्टूडेंट लाइफ हमने तो दीदी से पॉलिटिक्स की है ना, असल प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स तो हमने दीदी से सीखी। बाकी तो इंसान स्टूडेंट लाइफ में तो आपको पता है नारेबाजी की सियासत होती है ना, बाकी जो आप पॉलिटिक्स में अपने लीडर के इतने क्लोज रह के, और जितनी दीदी से मैंने सियासत सीखी है या जितना दीदी ने हमें सिखाया है, मैं समझती हूँ कि जो कुछ आज जो कुछ हमें पता है, ये सारा इसका सारा वो मेंटर थे हमारी सियासत में, सब कुछ उन्होंने हमें सिखाया। और फिर इसलिए जब हमने इतनी ग्रूमिंग उन्होंने हमारी कर दी थी, तो फिर हमारी बात को वो कभी जब हमें डांटती भी थी, हम आर्ग्यूमेंट भी बहुत ज्यादा उनके साथ करते थे, और सिर्फ हम नहीं करते थे, सारी पार्टी के लोग जो है ना, कोई रजा रबानी साहब थे और भी बहुत सारे लोग थे जो कई बातों में बड़ी बहस उनके साथ करते थे, तो सुनती रहती थी। ये कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं मेरी मर्जी चलेगी, नहीं, हमेशा रेसिडेंसी के साथ पार्टी के अंदर फैसला
के साथ चली। मैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की आपने बहुत कुर्बत में वक्त गुजारा, जब मैं पाकिस्तान की तारीख को देखती हूँ तो कायदे 47 में पाकिस्तान बनता है, 48 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना क्वेटा में, और उन्होंने क्वेटा में यानी स्टाफ कॉलेज में 14 जून 1948 को स्टाफ जो कॉलेज है, कमांड एंड कॉलेज है, वहां पे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि मुल्क पर हुकूमत सियासतदानों का काम है, आपका काम उनको पॉलिसी पर अमल करना है, यानी उनकी पॉलिसी पर अमल करना है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। और सुना है कि बाद में कायदे आजम को ये कहा भी गया था इदारों की तरफ से कि आप जो भी पॉलिसी बनाया करें हमसे पूछ जरूर लें, मगर शायद कायदे आजम पे बस ना चला हो, उनकी बीमारी ने मौका ना दिया हो। फिर उसके बाद लियाकत अली खान आ जाते हैं, लियाकत अली खान की असैसिनेशन इटसेल्फ बहुत बड़ा सवाल है कि लियाकत अली खान को मारने वाला उसी वक्त मारा जाता है, और वो जो पुलिस का बंदा उसकी तफ्तीश करता है वो उसका जहाज गिर जाता है, वो सारे के सारे सबूत सारे के सारे मिट गए, और वो जो सैद जिस शख्स ने उनका असैसिनेट किया था लियाकत अली खान को, उसकी फैमिली को जब तक फैमिली मेंबर जिंदा रहे उनको सपोर्ट किया गया। मुझे आप ये बताइएगा कि आप मोहतरमा महसूस करती थी, क्योंकि आज मैं महसूस करती हूँ इस वक्त जो हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, यानी और मैंने अगर पास्ट में देखा है, नोबडी इज लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, कि कुछ लोग पिछले लोगों को निकालने के लिए, हटाने के लिए, अपनी पोजीशन लेने के लिए, वो कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए एक मतलब मॉरल वैल्यूज के लिहाज से, मगर वो कर गुजरते हैं, बट दे डोंट लिव और सर्वाइव वेरी लॉन्ग। हर बंदा जो ये करता है वो कुछ अरसे के बाद, 10 साल 5 साल के बाद वो माइनस हुआ हुआ नजर आता है, अगर आप पिछले 70 साल की तारीख लेते हैं तो मुझे ये नजर आता है। तो क्या बात है कि आज तक पॉलिटिशियन इससे सबक ना हासिल कर सके कि जब हम सिर्फ हाँ में हाँ मिलाएंगे, जब हम नजरियात की बात नहीं करेंगे, जब हम मुल्क की बात नहीं करेंगे, तो जो हशर कल उसका हुआ था वही हशर हमारा भी होगा। तो बीबी क्या महसूस करते?
बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, हम बहसियत कौम पाकिस्तान बना 1947 में, बहसियत कौम जो हमने जो देखा है अब तक, हम एक कौम नहीं बन सके, हम फिकों में वो क्या उसको कहते हैं डिफरेंट चीजों में डिवाइड रहे, कोई पंजाबी अपने आप को कहता है, कोई पख्तून अपने आप को कहता है, कोई बलोच अपने आप को कहता है, कोई सिंधी अपने आप को कहता है, लेकिन कोई अपने आप को पाकिस्तानी नहीं कहता। अनफॉर्चुनेटली हम एक नेशन नहीं बन सके। अगर हम नेशन बनते, हम कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का जो एक यूनानिमस पास हुआ था उसके कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट रखते, रोज नई नई अमेंडमेंट्स ना लाते, तो शायद हमारे अदारे भी अपने रोल को कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने रोल दिया हुआ था, स्टेट के पिलर्स होते हैं ना, स्टेट के जो पिलर्स होते हैं, जुडिशरी हमारी वो दबाव में फैसले करती है। आप उस सिस्टम की को हाइब्रिड कह रही है, कह रही हूँ पूरा मुल्क ही हाइब्रिड हो गया है, जुडिशरी से लेके एग्जीक्यूटिव से लेके ब्यूरोक्रेसी से लेके, कोई ऐसा बंदा नहीं रहता जो आप हाइब्रिड ना, पता नहीं हम रोबोट्स बन गए हैं क्या बन गए हैं, ना हमारे अंदर कोई मॉरल्स रहे हैं, ना हमारे अंदर कोई अपनी इंटेग्रिटी रही है। हम आज IMF हमें डिक्टेट करके कहता है इतने टैक्सेस लगाओ, ये प्रोग्राम आप नहीं कर सकते, सुबह इतने बनाओ, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आर वी अ नेशन और वी आर अ बेगर, मतलब हमें ये तो डिसाइड करना चाहिए ना कि हम नेशन बन के रहना चाहते हैं या बेगर्स बन के रहना चाहते हैं। कि आज हमारा हर बच्चा जो है वो 3 से 4 लाख का मकलूज है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है बगैर उसके बढ़ती जा रही है, टेररिज्म बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम उनको फैसिलिटेट करने वाले भी हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने लोग उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। जो टेररिस्ट आते हैं मुल्क के अंदर वो कैसे आते हैं, आप खुद सोचे ना कैसे।
अरे मुल्क के अंदर ही उन टेररिस्ट को आने की इजाजत दी जाती है, कौन वही
मैं आपको कहूँ कि पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया है ना, जो जियाउल हक ने किया, जो जनरल अमीरपुर ने किया या जिसने भी किया, वो है अफगान जिहाद में जाना। आपने अफगान जिहाद में जाके जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान में ढूंढते रहे ना, उसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके रख दिया। कि आज वो लोग जो वहां गए हैं वो तालिबान आपके भी हाथ से निकल गए और आप वो बंदूक लेके आपके ऊपर सवार हैं। छोटे स्कूल के बच्चे मारे जा रहे हैं रोजाना बेचारे, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, फौजी मारे जा रहे हैं, खवातीन मारी जा रही हैं। आप मुझे बताएं कि क्या हम क्या करते हैं। एक एक सुबह जो है वो जो सुबह खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान लीड कर रहा होता है, दूसरे सूबे में वहां फंक्शन बड़े बड़े डांस के फंक्शन हो सकते। मतलब मैं ये कहती हूँ ना कि हम नेशन नहीं बन सके, हम जब तक कौम नहीं बनेंगे, हम जब तक कौम नहीं बनेंगे, हम अपने आप को पाकिस्तानी कहना नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान का नहीं सोचेंगे, हम फेडरेशन का नहीं सोचेंगे, हमारे मुल्क जहां से खड़ा है ना इससे भी ज्यादा बदतर होता जाएगा। और IMF हमें अब डंडे के जोर से चलाएगी जिस तरीके से वो चला रहे हैं।
एक फेडरेशन बनने के लिए आम आवाम को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। अब आप इमेजिन करें कि कहाँ
के भुट्टो साहब की बात है ना, ताकत का सिर्फ चश्मा आवाम है, आपने आवाम के साथ अपना कनेक्ट खत्म कर दिया।
मुझे आप एक बात बताइएगा कि यू आर वेरी क्लोज टू मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा और इस वक्त आसिफा भुट्टो, शी स्पीक्स वेरी वेल, बड़े अच्छे तरीके से, मतलब पुरसकून अंदाज में वो अपने आप को रिप्रेजेंट, बड़ा काम मुझे उनकी बातचीत लगी। क्या बात है बिलावल भुट्टो साहब, आसिफा जरदारी साहिबा, इन्होंने आपको बचपन से अपने इर्द गिर्द देखा, आप उनको मीटिंग्स में भी लेके जाती रही, डोंट दे रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट यू आर फॉर, के आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो उनकी वालदा से मुतल्लिक गुफ्तगू, तो क्या ये बच्चे भी आपकी तरफ या सजेशन लेने के लिए आपकी तरफ नहीं मुड़ते? डोंट दे फील के
उन्होंने अपने वालिद साहब के साथ, अपने वालिद साहब के साथ तो वालिद की रिस्पेक्ट करनी भी चाहिए। मैं कभी भी नहीं कहूंगी कि अपने वालिद के लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो, लेकिन वालिद के साथ रहने में और फिर मेरे साथ बात करने में उनको उनकी उनको वो करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, जो मैं ना खुद कभी भी चाहूंगी और ना वो बच्चे इतनी हिम्मत करेंगे कि वो कभी मुझे सलाम करें या दुआ करें। बिलावल आए थे, बिलावल 2-3 दफा मेरे इन-लॉज के घर आए थे, एक दफा मेरी सिस्टर इन लॉ की डेथ हुई थी और एक दफा उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, वो गए थे, लेकिन मैं तो नहीं मिली, मेरे हस्बैंड को
जरूर चाहिए था, आपको मिल लेना चाहिए था।
मैं क्यों, मेरा मैं दीदी के बच्चे जहाँ रहे पूछ रहे, मेरा
के पॉलिटिशियंस, मुझे सिर्फ जागीरदार, बड़ा अजीब सा सवाल है और मेरी रिक्वेस्ट है कि शायद मैं 10 दफा सोच के ये बात करने लगी हूँ। अभी टेररिस्ट का भी जिक्र आया और क्या बात है, जितने अटैक्स होते हैं टेररिस्ट के उसमें गरीब आदमी आम आदमी मारा जाता है, वो जितने करप्ट हैं उनमें से किसी एक पे भी टेररिस्ट अटैक नहीं होता।
हमेशा सफर तो गरीब ही करता है ना, कभी
जाने वाले
वो अपने शेल्फ में बंद होते हैं, वो शेल्फ में बंद होते हैं, उनके साथ 20-30 गार्ड्स चलते हैं। आप देखें लोगों को तो जिस तरीके से आपने आप देखें जिस तरीके से चीते वॉर ईरान अमेरिका और इजराइल की जो भी हुआ है कॉन्फ्लिक्ट, पेट्रोल जितना महंगा हो गया, उससे डेली कमोडिटीज कहाँ चली गई है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है। मतलब हम एग्जाम्पल बने, पार्लियामेंट को या गवर्नमेंट को एग्जाम्पल बनना चाहिए, स्टेट को एग्जाम्पल, स्टेट माँ का दर्जा रखिए लोगों की, सारे लोगों को रुकावटू करने के लिए। पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ा दी गई, उनकी फैसिलिटीज बढ़ा दी गई, उनकी ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहें बढ़ा दी गई, लोगों बेचारे गरीबों की पेंशनें बंद कर दी गई। तो ये सिस्टम नहीं चल सकता ना। आप नाइंसाफी की एक हाथ होती है।
अटैक भी होता है तो गरीब के ऊपर ही होता है, इन वडेरों पे नहीं होता।
बॉइल हो रहा है, मैं आपको बिल्कुल सीधे, बहुत अच्छा पाकिस्तान रोल भी बड़ा अच्छा प्ले कर रहा है अभी जो अमेरिका और उनकी ईरान की निगोशिएशन में, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये ऊपर की बातें हैं, ये जो अंदर बॉइल हो रहा है ना, जो अंदर पक रहा है लावा,
इट इज अ वोल्केनो, इट्स चाहे फटेगा तो बहुत बुरा फटेगा।
एग्जैक्टली, मैं तो आपको बींग अ पॉलिटिकल वर्कर, बींग अ पाकिस्तानी, बींग अ वेल विशर ऑफ पाकिस्तान, मैं तो यही कहती हूँ कि हर अदारा अभी भी समझ जाए, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक रोल प्ले करें, और ये ओवर जो कर रहे हैं ना, लोगों को स्टैम्पेड करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की लाशों के ऊपर गुजर के लिए अपने सिस्टम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चैलेंज ये सस्टेन नहीं कर सकता, और इनसे अवॉइड करें, वरना इतना पाकिस्तान के अंदर इतना खून खराबा होगा, इतने लोग बेचारे जो है ना गरीब मारे जाएंगे, अमीर का कुछ नहीं जाएगा, वो फिर बेचारा गरीब मारे जाएगा।
बहुत शुक्रिया नाहिद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे से बात की। मेरा दिल चाहता है कि आप एक ओपन लेटर जरूर लिखें।
थैंक
यू एक्सपीरियंस, आई थिंक यू शुड राइट एन ओपन लेटर ऑन द गूगल, जिसमें आप बीबी के नजरियात का पता है, आप इस वक्त के पॉलिटिशियंस को एड्रेस जरूर करें।
मैंने बल्कि कल एक नेशनल डायलॉग इनके ये कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें उन्होंने मुझे उसका जो उन्होंने हैंड आउट जारी किया, उसका उनके जवाब में भी मैंने लिखा है, मैं आपको वो भेजती हूँ, आप जरा उस लेटर को मेरे पढ़े। मैं तो
ओपन लेटर लिखें कि भाई खुदा के नेक बंदो, 70-76 सालों के बीच में आप देखो कि किस किस ने कॉम्प्रोमाइज किया था, उसका अपना नतीजा क्या हुआ, किसी का जहाज उड़ गया, किसी को गोली लग गई।
कॉम्प्रोमाइज किए, अगर कॉम्प्रोमाइज ना किए होते आज हम देखें, हम एक इंडिपेंडेंट नेशन की हैसियत से सर्वाइव कर सकते हैं ना। आप लोगों के ऊपर जो इतना टैक्सेस का बोझ डाल रहे हैं, आप लोगों को कहेंगे जी आप 2 महीने जो है ना सब चीजें ये बंद कर दें, आप देखें कौमें सर्वाइव करती हैं ना, जिन लोगों के ऊपर पेंशन लगते हैं या जिन कौमों के लिए सर्वाइव करना होता है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, आज हम हर वक्त या UAE से मांगते हैं, सऊदी अरब से मांगते हैं, मतलब तो बेगर्स बन रहे हैं। मुझे तो शर्म आती है अपने आप को ये कहते कि भाई मेरा
गद्दारी साहब मांगने नहीं निकले, प्राइम मिनिस्टर बेचारे आगे लगे हुए। आखिरी सवाल जो मेरा आपसे सवाल है वो ये कि जरदारी साहब जो हैं वो बिलावल भुट्टो को फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं, उधर से मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के बारे में ख्याल किया जाता है कि शी इज गोइंग टू बी दी फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, यानी चंद खानदानों के बीच में ये मुल्क फंस गया, तो अगर नहीं होता तो क्या इख्तलाफ होगा।
वो कहते थे ना कि वो अब भुट्टो साहब ने तो 22 खानदानों से निकाली थी ना पॉलिटिक्स, अब ये चंद खानदानों ने अपनी अजारादारी बना ली है पूरे पाकिस्तान को, और बाकी सबको ये कहते हैं ये हमारी रियाया है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू एनी वन। ना कोई अगर मेरिट पे आता है, मेरिट पे आए नहीं आता तो कोई खानदानी विरासतें अब ये आइंदा नहीं चल सकती। देखें अब एक आप इसे एग्जाम्पल दें कि इमरान खान से मैं इमरान खान साहब की पार्टी से मेरा ताल्लुक नहीं, लेकिन मैं यकीनन एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से ये कहती हूँ कि उनके साथ नाजायज किया जा रहा है, ज्यादती की जा रही
है।
एक बंदा जिसको इतना पॉपुलर वोट है उसका, आपको कोई राइट नहीं पूछता आप उनको इस तरह बंद करके रखे, आप केसेस है तो आप चलाए कोर्ट में, उनको जो आपने देनी है सजा दें, लेकिन इस तरह इतने सारे शाह महमूद कुरैशी हैं, उनके सेनेटर्स हैं, उनको एक्स गवर्नर है, वो बेचारी यासमीन राशिद साहब बेचारी कैंसर पेशेंट है, मतलब ये दिस इज नॉट फेयर, मतलब ये कौन कौन सी हुकूमतें डिसाइड करेगी, मतलब जजेस जो है उनके अंदर हिम्मत नहीं है, वो इतनी हिम्मत नहीं पाते कि वो कोई चीज डिसाइड कर सके, वो तो डिक्टेशन लेते हैं जजेस की, वो अगर कोई बात करे तो उसको कहते हैं कि इसको जेल में बंद कर दो, करते कितनी जेलें बंद करेंगे, भरे आप जेलें, करें आप एक दफा सबको बंद, पूरे पाकिस्तान को आप बंद करते हैं एक दफा, कम से कम इंसाफ तो मिले लोगों को, इस सोसाइटी में इंसाफ नहीं होता तो मर जाती है कौमें, कौम थोड़ी कहलाती है।
शुक्रिया, इक्तदार मिलता रहेगा मगर ये दुनिया हमेशा नहीं रहनी तारीख, वो नफ्स की ना चार किस्मों के बारे में आ रही, कॉन्शियस शऊर जिसको कहते हैं, कि एक वक्त होता है कभी आप नमाज अपनी मिस करें ना तो होता है मेरी नमाज रहेगी रहेगी रहेगी, इसका मतलब अभी اس میں زندگی باقی, دل میں ابھی زندگی باقی, میرا دل ابھی زندہ ہے, مگر ایک سٹیج ہوتی ہے آپ کسی کو قتل بھی کر کے آئے, چوری کر کے آئے, آپ کا نفس ہی ختم ہو جاتا ہے, آپ کا وہ کانشیسنیس ہی ختم ہو جاتی ہے, آپ کا شعور ہی ختم ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے اس سٹیج میں سے گزر رہے ہیں, اس میں
جب تک اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے لوگ, سسٹم اکاؤنٹیبل نہیں ہوگا, کسی کے اوپر کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے. انفارچونیٹلی اس کے لیے ہمیں سب کو پاکستانیوں
اکاؤنٹیبل کیا کس نے, آپ کے وڈیروں نے, آپ کے وہ جو طاقتور لوگ ہیں انہوں نے کیا ہے, بٹ ان شاء اللہ یو نو وٹ کہتے ہیں کسی کی آواز سے ڈر, آپ کا بہت شکریہ محترمہ نحید نحید خان صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ, بہت شکریہ.
آپ کبھی پاکستان آئے تو پلیز ڈو لیٹ می نو, آئی ول
ڈیفینیٹلی میٹ یو. اور میں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں بہنوں سے کہتی ہوں قرآن اور حدیث قطعاً غلط نہیں, جیسی قومیں
آپ کے جو اسٹاف ہیں ان کو بھی تھینک یو کہہ رہے ہیں, سلام دے,
آئی لو یو, بہت شکریہ. آپ تمام کے لیے ایک پیغام ہے کہ قرآن اور حدیث قطعاً غلط نہیں ہے, اس نے کہا جیسی قومیں ویسے لیڈر, آئی مسٹ لک ایٹ میرے اپنے گریبان میں, مجھے جھانکنا ضرور ہے. عام آدمی سے لے کے آپ کی پولیس سے لے کے آپ کی عدالتوں سے لے کے آپ کے وہ جو ٹھیلے والے سے لے کے ہر انسان کا جہاں بس چلتا ہے وہ جھوٹ بھی کرتا ہے, وعدہ خلافی بھی کرتا ہے, اور پھر جیسے ہم ہیں تو ہمارے لیڈرز تو ہم سے 100 گنا زیادہ آگے ہوں گے. ابھی دیجیے اجازت, آئی ایم ناٹ ان ٹو دا پالیٹکس, میرا صرف دل جلتا ہے, میرا دل دکھتا ہے تو میں آپ سے بات کرتی ہوں. نحید خان صاحبہ کا بہت شکریہ, اٹ از ویری لیٹ ان پاکستان کہ انہوں نے میرے سے بات کی, آپ سے بات کی, ہم انشاءاللہ دوبارہ بھی ان سے بات کریں گے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.
یو آر لسننگ ٹو WTOR 770 AM Youngstown Toronto.
پیٹرو کینیڈا پیش کر دے جیورون ہیوی ڈیوٹی ڈیزل انجن آئلز, ہن فل سروس سیونگز نال 10W30 سنتھیٹک $20 ڈسکاؤنٹ, $5W30 $40 ڈسکاؤنٹ, آفر لمیٹڈ ٹائم لئی, $5W30 کوئک سٹارٹ اور آئل فلو ٹھنڈے موسم وچ جیتو, $10W30 انجن دی کارگزاری نو بنائے رکھدا, QTL دی 3 لوکیشنز تے پوجو اور لاب چکو, ایگزٹ 268 کیمبرج, ایگزٹ 579 ناپنی, ایگزٹ 5 فورٹ ایئری. پیٹرو کینیڈا QTL, بلے بلے انوٹھا سا.
میری پورے سال کی سیونگ $400 ہوئی ہے,
میری سیونگ $350
اور میری سیونگ سب سے زیادہ ہوئی ہے, میں نے سیو کیے ہیں $2000.
کیا چمتکار کیا, مجھے بھی گر سکھاؤ نا.
ہمارے پاس 2 گاڑیاں اور 1 گھر ہے, اور ان سب کی انشورنس ملا کر میں نے زبردست سیونگ کی ہے. آپ بھی اپنی گاڑی اور گھر کی انشورنس میں خوب سیونگ کر سکتے ہیں. ٹرم اینڈ کنڈیشن اپلائی, آل اسٹیٹ پکرنگ ایجنسی کے راجہ باشد, 6472903773 6472903773.
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है.
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई 9 ब्याज,
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171.
ٹرک ڈرائیور بھائیوں, اب یو ایس اور کینیڈا میں انلمیٹڈ ڈیٹا, ویور ٹیلی کمیونیکیشن کے ساتھ فل اسپیڈ, نو رکاوٹ, سفر بزنس کا ہو یا شوق کا, ورلڈ وائڈ ہی سم ڈیٹا پلان کے ساتھ انٹرنیٹ ہمیشہ ریڈی. ٹریول کر رہے ہو انڈیا, پاکستان یا حج یا عمرے کے لیے, ویور ٹیلی کے ساتھ ہمیشہ رہو آن لائن, دور دراز علاقہ کوئی پرابلم نہیں, گھر ہو یا کیبن, ویور ٹیل کی ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ چلتی ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں. وزٹ کریں weavertel.com یا کال کریں 416-243-9836 416-243-9836. کنیکشن آپ کا دنیا کے ساتھ.
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ.
ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰ, 3-ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ, ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦਾ ਟਾਊਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ, 801 Bowie Drive West, Brampton, ya call karo 905-450-2828, 905-450-2828.
ਟਰੱਕ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਮੋਹਰੀਨਾ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣੇ ਜਾਂ ਫਲੀਟ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਸਰਵਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਰਾਹੀਂ ਬੈਸਟ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਆਇਲਸ ਫਿਲਟਰਸ ਇੰਜਨ ਦੀ ਜਾਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਿੰਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ QTL ਐਗਜ਼ਿਟ 268 ਹਾਈਵੇ 401 ਕੇਂਬ੍ਰਿਜ ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਹਾਈਵੇ 401 ਮੈਪਨੀ ਐਗਜ਼ਿਟ 5 QEW 4 ਏਰੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਂ QTL 519 622 0660 ਜੋ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜ਼ੀ ਜਾਵੇ